ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सप्तम अध्याय श्लोक 26। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन तानि मां तु वेद न कश्चन। वेद जानता है अहम मैं समतीतानि भूतकाल को वर्तमानानि वर्तमान को च तथा अर्जुन हे अर्जुन भविष्याणि भविष्य को च भी भूतानि सारे जीवों को माम मुझको तू लेकिन वेद जानता है ना नहीं कश्चन कोई। इस श्लोक का अनुवाद। हे अर्जुन श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है ये सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। अब आप भी बोलिए। हे अर्जुन श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तात्पर्य यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता जैसे कि मायावादी मानते हैं तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता न ही वो भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वो ये नहीं जानता कि भूत वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कल्मश से मुक्त हुए बिना वो ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्य से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे ये भलीभांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानता है। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव विवश्वान को जो उपदेश दिया था वो उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों ना समझ लेते हैं। निस्संदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है, वे सूर्य के समान हैं और माया बादल के समान हैं। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारे दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते, जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्र ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान श्री कृष्ण को समझ पाता है। भली ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावना मृत के बिना वो भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवत गीता में ये स्पष्ट रूप में प्रतिपादित हो रहा है कि भगवान और जीव में अंतर क्या है। भगवत गीता के शुरू शुरू में द्वितीय अध्याय में भगवान बताया था अर्जुन को कि आत्मा क्या है। अपना स्वरूप में हम सब आत्मा हैं, शरीर नहीं है, और ये आत्मा का स्वरूप कैसा है। आत्मा भौतिक नहीं है, उसके नाते इस भौतिक जगत की किसी भी स्थिति या प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है। आत्मा किसी भौतिक विषय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। जैसे भगवान कह रहे हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई अस्त्र के द्वारा आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। नैनं दहति पावकः, अग्नि के द्वारा आत्मा को जला नहीं जा सकता है। आत्मा किसी भी भौतिक प्रभाव के द्वारा विकार प्राप्त नहीं होता है। आत्मा नित्य शाश्वत है, आत्मा चिन्मय है, चेतन है। ये ये विषय भगवान भली भांति अर्जुन को समझाया शुरू में। उसके पश्चात भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि आत्मा और भगवान में क्या अंतर है। जो अल्पज्ञानी है, जिसको सही ढंग से वैदिक तत्व ज्ञान का प्राप्ति नहीं हुआ है, उन्होंने सोचते हैं कि आत्मा और भगवान या परमात्मा एक है। कोई सारे व्यक्ति बोलते हैं कि हाँ आत्मा ही परमात्मा है, परंतु गीता में ये प्रतिपादित हुआ है, भगवान बहुत भली भांति गीता में समझाया कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, आत्मा और परमात्मा में अंतर है। और वो अंतर कैसी है, आत्मा और परमात्मा का अंतर, आत्मा और परमात्मा में अंतर कैसा है, जैसे चतुर्थ अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि, और इस श्लोक में भी उसका वर्णन हुआ है कि हे अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में पूर्ण रूप से जानता हूं, मैं सब जानता हूं और मैं सब जीवों को भी जानता हूं, परंतु हम नहीं जानते। हम अपना अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, भूल गए हैं। पिछले जन्म में मैं कौन था, मेरा पिता माता कौन था, मेरा भाई बहन कौन था, मेरा दोस्त कौन था, साथिया कौन था, कुछ भी पता नहीं है ना। और इस वर्तमान में भी थोड़ा बहुत याद है, परंतु बहुत सारे विषय में भूल जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं। कल मैं क्या किया हमको याद नहीं, कितने सारे विषय हम भूल चुके हैं। आज अगर हम सोचेंगे कल किस विषय में हम चर्चा किया, हम देखते हैं कि उसको याद नहीं है। कितने आदमी को कल फोन किया, मुझे पता नहीं है। तो कल की बात में भूल गया, सुबह में क्या किया वो भी भूल गया। वर्तमान को भी हमें यादगार नहीं रहता है, और भविष्य में क्या होगा उस विषय में भी हमारा कोई ज्ञान नहीं है। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य, वेदाहं, वेद अहं, मैं जानता हूं। वेदों का, वेद का शब्द का अर्थ है जानना। वेद अहं, मैं जानता हूं, समतीतानी, अतीत के विषय में, भूतकाल को, वर्तमानानी और भविष्यानी, और इसके साथ साथ भूतानी, भूतानी का मतलब सारे जीवों को भी मैं जानता हूं। भगवान केवल अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में ही नहीं जानते हैं, भगवान हर जीव के बारे में भी जानते हैं। इसका मतलब है मेरा अतीत में क्या हुआ, मेरा क्या हो रहा है और मेरा क्या होगा, वो सारे बात भगवान को याद है। केवल मेरा ही नहीं, जितने जीव है उन सारे जीवों को भगवान हमारे सारे विषय में जानते हैं। इसमें कुछ अंतर हो रहा है ना, हम और भगवान में कुछ अंतर हो रहा है। मैं नहीं जानता हूं, आप में से कोई जानते हैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में? आप लोग भी नहीं जानते, परंतु कृष्ण यहां बोल रहा है कि मैं जानता हूं। तो कृष्ण क्या झूठ कह रहे हैं? कृष्ण क्या यहां झूठ कह रहे हैं? नहीं, कृष्ण जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान है। यह है जीव और भगवान में अंतर। ऐसा नहीं कि हम अब जीव हैं पर बाद में भगवान बन जाएंगे या भगवान बन सकते हैं, कभी नहीं। भगवान हर स्थिति में ही भगवान है, और हम भी हर स्थिति में जीव हैं। किसी स्थिति में हम मुक्त हैं और किसी स्थिति में हम बद्ध हैं, अंतर केवल ये ही है, मुक्तावस्था और बद्धावस्था। बद्ध मतलब इस भौतिक जगत के बंधन में हम गिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं। हमारा अब आज का स्थिति कैसा है? हम भौतिक जगत के बंधन में हैं, परंतु हम मुक्त हो सकते हैं। मतलब उस समय भौतिक जगत का गुण का प्रभाव हम पर नहीं रहेगा, हम हमारा आत्मिक स्वरूप में, आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अंतर केवल यही है, अर्थात जीवात्मा बद्ध अवस्था में रह सकता है या मुक्त अवस्था में रह सकता है, परंतु भगवान कभी बद्ध नहीं होते। इसका एक दृष्टांत ऐसे दिया गया है कि राजा का राज्य में दो प्रकार के प्रजा होते हैं, दो प्रकार के प्रजा होते हैं। एक प्रकार का प्रजा जो कैदी है कारागार में, वो भी राजा का प्रजा है ना। हाँ, यहां तो जेल है ना, एक बड़ा जेल तो बन रहा है, मैं देखता हूं इंदौर से जब आता है बहुत बड़ा जेल बन रहा है रास्ते के पास में। यहां भी हम देखे हैं जगह जगह में जेल है, तो जेल में कौन रहता है? हाँ, कैदी लोग रहते हैं। तो जेल में अंतर क्या है? जेल से वो निकल नहीं सकता है, वो कैदी है। और हम सब मुक्त हैं, परंतु ऐसा नहीं कि कैदी जब मुक्त हो जाता है वो राजा बन जाता है, ऐसा होता है कभी? तो वैसे ही हमारा स्थिति, हम हर स्थिति में ही जीव हैं, जैसे राजा का प्रजा है वैसे हम जीव हैं। किसी स्थिति में हम इस भौतिक जगत का कैदी बन जाते हैं, और नहीं तो हम इस भौतिक जगत का बंधन से मुक्त होते हैं। जब हम मुक्त हो जाते हैं तब हम आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं, इस भौतिक जगत में और नहीं रहता। परंतु जब तक हम बद्ध रहते हैं तब हम इस भौतिक जगत में रहते हैं। और कारागार में क्या होता है, कैदी को क्या मिलता है? कारागार में कैदी का क्या राजा का जैसे ट्रीटमेंट मिलता है? कैदी को कारागार में दंड मिलता है। तो ऐसे ही इस भौतिक जगत में हमें क्या मिल रहा है? हमें दंड मिल रहा है। और ये दंड का कारण क्या है? क्योंकि हम कुछ अपराध किए हैं। तो हमारा अपराध क्या था? हम भगवान को अस्वीकार किया, हम भगवान के विरुद्ध में विद्रोह किया, उसके कारण हमें इस भौतिक जगत में सजा मिल रहा है। तो कैदी राजा को विरोध करने से कैदी को कैद मिला है, तो कैदी को अगर कैद खाना से निकलना है, छूटना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कैदी को अगर निकलना है कारागार से, कैदी अगर राजा को स्वीकार कर लिया और राजा को पास माफी मांग लिया उसके अपराध के, तो राजा क्या करेंगे? उसको मुक्त कर देंगे, बोलेंगे ठीक है इसको कारागार से मुक्त कर दो। इसका मनोभाव सही हो गया अब। तो वैसे ही जब हम भगवान को शरण ले लेते हैं तब हमें और इस कारागार में नहीं रहना पड़ता। परंतु कोई कैदी अगर सोचेगा कि मैं जब कारागार से निकलूंगा तब मैं राजा बन जाऊंगा, जैसे इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति सोचते हैं कि मैं जब इस जड़ जगत के, इस भौतिक जगत का बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, मैं जब मुक्त हो जाऊंगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा, तो उसको कभी कारागार से मुक्ति मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो जो सजा है वो सबसे कठिन सजा होता है, राजा का विद्रोही। अगर कोई राजा बनना चाहता है इसका मतलब क्या है? वो राजा को विरुद्ध विद्रोह कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि राजा को उसका सिंहासन से हटाकर वो उस राजा के सिंहासन में बैठेंगे। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति सोचते हैं कि मैं भगवान बन जाऊंगा, असल में वो क्या है? ऐसे तो कभी भी जीव भगवान नहीं बन सकते हैं, और भगवान बनने का इच्छा पोषण करने से हमारा सजा, हमारा दंड और अधिक होता रहेगा। भौतिक जगत से मुक्ति तो नहीं मिलेगा, परंतु हमें बहुत ही कठिनाई, बहुत ही कष्ट, बहुत ही सजा, बहुत दंड मिलता रहेगा। तो ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। देखो अर्जुन, मैं अतीत, वर्तमान, भविष्य के बारे में सब कुछ जानता हूं, हर व्यक्ति के, हर जीव के बारे में मैं जानता हूं, इस कारण मैं कौन हूं? भगवान कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान है। तो हमें भी ये सोचना पड़ेगा, अगर हम सोचते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा, और हर जीव के बारे में जानना पड़ेगा। तो आप सोचिए, आप जानते हैं? नहीं। तो आप भगवान हैं? नहीं। तो आप कौन हैं? भगवान के दास हैं, भगवान के दासी हैं। जीव का स्थिति ऐसा ही है, जीव का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है वो भगवान का नित्य सेवक है, नित्य दास है। और जब हम भगवान का दासत्व स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें बहुत ही आसानी से इस भौतिक जगत के बंधन से हमें छुटकारा मिल जाता है। और जब हम भगवान को सेवा में लग जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? तो हमें आनंद मिलता है।